नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति के कारण अपराधी डरे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के प्रचार में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगाई। प्रमुख वैश्विक आर्थिक कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने वर्ष 2024 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को बढ़ाकर 6.7% किया। मौसम विभाग ने कहा, पश्चिम उत्तर और मध्य भारत में अगले 3 दिन में गर्मी से राहत मिलेगी और रोहन बोपन्ना और यूकी भामरी आज से शुरू हो रहे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी धारणा पर नहीं बल्कि साक्ष्य आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करती है। प्रधानमंत्री ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा कि जब बड़े आरोपी पकड़े जा रहे हैं तो निहित स्वार्थों पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं।
अन्य रूप से मीडिया में भी चर्चा होती थी कि बड़े बड़े मगरमच्छ तो छूट जाते हैं, छोटे छोटे लोगों को आप पकड़ करके चीजें निपटा देते हो। फिर एक काले खंड ऐसा आया कि हमें पूछा जाता था 19 के पहले कि आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्यों कदम नहीं उठाते हो, क्यों अरेस्ट नहीं करते हो, क्यों लोगों को नहीं करते। हम कहते भाई हमारा काम नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी कर रही है और हम बद इरादे से कुछ नहीं करेंगे।
श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने हमेशा नीति संचालित शासन पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार के हर निर्णय में केंद्र में देश सबसे पहले है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 38 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लोगों के खाते में सीधा हस्तांतरित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के अंतर्गत हमारा उद्देश्य स्वदेशी प्रतिभा को बढ़ावा देना और रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है। उन्होंने नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को समझने और उनके सपनों को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक मंच प्रदान करने पर बल दिया। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दुमका में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी दुमका सीट से चुनाव लड़ रही सीता सोरेन के पक्ष में जनसभा करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा देवघर में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 30 मई को चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। 1 जून को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में झारखंड के गोड्डा, दुमका और साहेबगंज में मतदान होगा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केवल साहेबगंज सीट जीती थी। बिहार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ पाटलिपुत्र के दीघा और पटना साहिब में रैलियों को संबोधित करेंगे। श्री आदित्यनाथ आरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बरहारा में भी एक रैली करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार आज नालंदा संसदीय क्षेत्र में सरमेरा से नगर नौसा तक एक रोड शो करेंगे। वे नालंदा संसदीय क्षेत्र के अस्थावा में एक जनसभा भी करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बक्सर, सासाराम, जहानाबाद और पाटलिपुत्र निर्वाचन क्षेत्रों में कई जनसभाएं करेंगे। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी भी ग्रैंड अलायंस के उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियों को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, सलेमपुर और चंदौली में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव विकास और देश को सुरक्षित रखने तथा गरीबों के कल्याण के लिए है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजीपुर और चंदौली में रैलियों को संबोधित किया। श्री यादव ने दावा किया कि भाजपा और बहुजन समाज पार्टी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा में चुनाव रैलियां की। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के पालीगंज में श्री राहुल गांधी ने कहा कि INDI गठबंधन गरीब परिवार की महिलाओं को महालक्ष्मी योजना से सशक्त बनाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी विभिन्न संसदीय क्षेत्रों जहानाबाद, पालीगंज, जगदीशपुर और बिहटा में चुनावी रैलियां की। उधर बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नालंदा संसदीय क्षेत्र के हिलसा में रोड शो किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ मोहन यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी पाटलिपुत्र और पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में जनसभाएं की।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
तेलंगाना के वारंगल, खम्मम, नालगोंडा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से तेलंगाना विधान परिषद के उपचुनाव में कल लगभग 68.65% मतदान दर्ज हुआ है। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि कल शाम 4 बजे मतदान समाप्त होने तक 12 जिलों के 34 विधानसभा क्षेत्रों के 605 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। लोकसभा चुनावों के लिए प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र पर एक रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लगातार 4 बार भारी मतों से चुनाव जीतते आ रहे हैं और 5वीं बार फिर से इस क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने नए चेहरे के रूप में सतपाल रायजादा को चुनाव मैदान में उतारा है। इस बार एक और बात हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को खास बनाती है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी इसी चुनाव क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। अनुराग ठाकुर जहां केंद्र सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ साथ बतौर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में किए गए अनेक व्यक्तिगत पहलों के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदेश सरकार के लगभग 1.5 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों और भविष्य के रोड मैप को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व देश का गर्व।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने वर्ष 2024 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से बड़ी मात्रा में लाभांश हस्तांतरण के कारण अतिरिक्त राजकोषीय बढ़त के साथ भारत में निरंतर विकास गति की उम्मीद है। ये भी कहा गया है कि भारत में विकास दर सशक्त बनी हुई है और मुख्य मुद्रास्फीति के अप्रैल जून की समयावधि में निचले स्तर पर आने की संभावना है। ये रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब मौसम विभाग ने इस वर्ष देश में औसत से अधिक मॉनसून की बारिश होने के अपने पूर्वानुमान की पुष्टि की है, जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। बांग्लादेश के ऊपर गहरे दबाव वाला रेमल चक्रवाती तूफान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्व पूर्वोत्तर की ओर बढ़ गया है और कल रात ये तूफान बांग्लादेश में केंद्रित था। मौसम विभाग ने बताया है कि इस तूफान के पूर्व पूर्वोत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है और आज ये दबाव में बदलकर धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। इस स्थिति के कारण आज पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में पूर्वी जिलों में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि 30 मई तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है।
एबोव नॉर्मल हीटेड कंडीशन इस बार देखने को मिला है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। मई 16 में राजस्थान में शुरू होते हुए ये हीटेड कंडीशन स्प्रेड हुआ है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट यूपी, नॉर्थ वेस्ट एमपी, गुजरात, जम्मू रीजन इवन, और ये अभी तक हीटेड कंडीशन जारी है। हमारा पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिन तक यानी 29 तारीख तक ये हीटेड टू सीवियर हीटेड कंडीशन जारी रहेगा। 30 तारीख से इसमें एबेटमेंट होगा, हीटेड कंडीशन का एरिया कम होगा और तीव्रता भी कम होगा।
और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के पहले दौर में आज भारत के रोहन बोपन्ना और युकी भांबरी अपने अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी फिनलैंड के एमिल रुसुओ ओरी और हंगरी के मार्टिन फुस्कोविक्स से भिड़ेगी। वहीं भांबरी और फ्रांस के एल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी का मुकाबला रूस के रोमन सफीउलिन और ऑस्ट्रेलिया के जॉन पियर्स से होगा। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, एचएस प्रणॉय और लक्ष्य सेन सहित शीर्ष भारतीय खिलाड़ी सिंगापुर ओपन में आज अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। सिंधु डेनमार्क की लीन होजमार्क कैजर्सफेल्ड के साथ पहला मुकाबला खेलेंगी। वहीं लक्ष्य सेन का सामना दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसेन से होगा और एचएस प्रणॉय बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। इस बीच अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कल उज्बेकिस्तान के साथ 2 मैच के लिए 23 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा कर दी है। पहला मैच शुक्रवार को और दूसरा मैच 4 जून को खेला जाएगा।
हमास ने कहा है कि गजा पट्टी में युद्ध विराम या कैदियों की अदला बदली पर बातचीत में वो भाग नहीं लेगा। ये निर्णय रविवार रात को गजा के रफा पर इसराइल के हमले के जवाब में किया गया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद चंद्रिका। लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर अंतिम चरण के चुनाव में धुआंधार प्रचार और एक दूसरे पर पलटवार के साथ वायदों को भी अखबारों ने रोचक शीर्षकों के साथ पहले पन्ने पर दिया है। जनसत्ता और अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला शीर्षक से लिखा है, घोषणा पत्र में मतदाताओं को आर्थिक मदद का वायदा भ्रष्ट आचरण नहीं। मौसम के अंदाज पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, पारे के तेवर, कई शहरों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री पहुंचा, गर्मी के तेवर कम होने के आसार नहीं, जून भी तपेगा। नवभारत टाइम्स की बड़ी खबर है, भीषण गर्मी से राहत, 30 मई के बाद मानसून सामान्य या बेहतर रहने का अनुमान। राजस्थान पत्रिका ने बड़े अक्षरों में लिखा है, सूरज ने दिखाए तेवर, कहीं महागर्मी तो कहीं तूफान का कहर। चक्रवाती तूफान से हुई तबाही को अखबारों ने पहले पन्ने पर चित्र के साथ विस्तार से दिया है। लिखा है, बुनियादी ढांचे और संपत्ति को भारी नुकसान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, 135 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाओं और भारी बारिश ने मचाई तबाही। त्रिपुरा और कोलकाता में उड़ानें रद्द होने की खबर भी साथ ही है। घरेलू बाजार में उतार चढ़ाव के बाद सोमवार को कारोबार में पहली बार 76,000 का आंकड़ा और निफ्टी की ऐतिहासिक 23,000 की ऊंचाई आज अखबारों की बड़ी खबर बनी है। हालांकि पत्र लिखते हैं, मुनाफा वसूली के बाद गिरावट के साथ बाजार बंद। दिल्ली के सभी अस्पतालों में आग से निपटने के उपायों की जांच के आदेश, हिन्दुस्तान के पहले पन्ने की बड़ी खबर है। दैनिक भास्कर ने रोचक खबर दी है, जापान में शहर के लोगों को खेती से जोड़े रखने के लिए धान रोपने का पर्व मनाया जाता है, जहां लोग बच्चों के साथ धान रोपाई के लिए जाते हैं ताकि लोग खेती का महत्व भूल न सकें। देशबंधु और अमर उजाला ने लिखा है, कार्मिक मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है, डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर कामत को 1 वर्ष का सेवा विस्तार मिला। वहीं दैनिक जागरण लिखता है, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया 31 मई तक शुरू हो जाएगी।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति के कारण अपराधी डरे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के प्रचार में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगाई। प्रमुख वैश्विक आर्थिक कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने वर्ष 2024 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को बढ़ाकर 6.7% किया। मौसम विभाग ने कहा पश्चिमोत्तर और मध्य भारत में अगले 3 दिन में गर्मी से राहत मिलेगी और रोहन बोपन्ना और यूकी भामरी आज से शुरू हो रहे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।